તારીખ 14/9/1991 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 375 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 22 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना, क्या आगे कहते हैं कि पहचानने का अभ्यास करना. अभ्यास का मतलब है यहाँ शास्त्र की पढ़ाई करना, वो बात नहीं है, लेकिन पहचान करने का प्रयत्न रूप अभ्यास करना, बार बार प्रयत्न करने को अभ्यास कहते हैं. तो पहचानने का अभ्यास करना, जैसे कपड़े का व्यापारी क्या करता है, जो कपड़े को पहचानने का अभ्यास करता है कि क्वालिटी कौन सी बढ़िया है, कौन सी हल्की क्वालिटी है, उसको पहचान आती है. ऐसे जो गल्ला का व्यापार करता है अनाज वगैरह का, तो वो भी पहचानता है. गेहूं तो गेहूं है, लेकिन बहुत सी जात उसमें होती है, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, इसकी क्वालिटी बराबर नहीं होती है, पहचान से पता चलता है. तो पहचान करने का अभ्यास होता है, खास करके पहचान करने का अभ्यास से पहचान होती है, इसमें पढ़ाई का काम नहीं है। पढ़ाई दूसरी चीज है, पहचान करने का अभ्यास होना दूसरी चीज है। ये प्रश्न यहाँ हो सकता है कि पहचान करने का अभ्यास की मुख्य विधि कौन सी है, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर आता है कि पहचानना का अभ्यास करना मतलब वेद ज्ञान का अभ्यास करना, वही कर्तव्य है। मुमुक्षु को कर्तव्य क्या, ये पूछते हैं, हम क्या करें, हमको क्या करना कि वेद ज्ञान का अभ्यास करना, हर प्रसंग में, हर उदय में मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, रागादि स्वरूप में नहीं, देहादि स्वरूप में नहीं। बस जब मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं तो मुझे, मैं राग स्वरूप हूं और देह स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव क्यों होता है। मां लड़ाई करनी है ज्ञान को मुख्य करके, और ज्ञान में भी ज्ञान सामान्य को मुख्य करके, ज्ञान से अतिरिक्त जो भी कुछ द्रव्य और भाव है, रागादि भाव और देहादि पर पदार्थ, मैं ज्ञान स्वरूपी भिन्न हूं, ऐसा अपना भिन्नपने का अनुभव करने का, ज्ञान से भिन्नपने का अनुभव करने का अभ्यास करना, प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना, उसको अभ्यास कहते हैं। इससे निर्णय आएगा, इससे पहचान आएगी। अपन जरा वो सुविधि का प्रकरण है, उसमें जरा सूक्ष्मता से इस बात को समझ में आवे, इसलिए थोड़ा सूक्ष्मता से लिया है कि राग का भी अनुभव होता है आकुलतारूप, और ज्ञान का भी अनुभव होता है। उसको सतत अवलोकन करने से, अवलोकन करने से मैंने दोनों का अनुभव को बार बार अनुभव गोचर रूप से देखने से, विभाव के रागादि अनेक प्रकार के विभाव में विभाव जाति क्या है, और ज्ञान में स्वभाव जाति क्या है, इस जाति की पहचान हो जाएगी। धर्म में के क्षेत्र में भूल जाति की पहचान नहीं होने से होती है, कि जैसे कि कोई आत्मस्वरूप का चिंतन करता है तो चिंतन में विकल्प है, वो स्थूल मिट करके फिर सूक्ष्म विकल्प हो जाते हैं, और चंचलता भी घट जाती है, और कषाय भी बहुत मंद होता है, थोड़ी शांति भी लगती है, तो उनको ये लगता है कि मुझे अनुभव हो गया, सानुभव हो गया, ऐसा लगता है। तो क्या, क्यों भूल हुई कि विभाव जाति के जो परिणाम है उसमें एक भी विभाव अंश होवे तो ये विभाव है, स्वभाव नहीं है, इतनी पहचान नहीं आई, इसलिए विभाव को स्वभाव मान लिया, उसको अनुभव मान लिया, आत्मानुभव मान लिया, ऐसा हो गया। तो वेद ज्ञान का अभ्यास करने से राग का निषेध होता है, वेद ज्ञान के अभ्यास में रागादि परद्रव्य और प्रभाव का निषेध आता है, और ज्ञान का आदर आता है, अहमपना ज्ञान में होने का प्रयत्न होता है। ऐसा अभ्यास बार बार करना, वह अभ्यास करते करते, इस प्रकार का प्रयत्न रूप अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो, उसको आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। क्या भाषण आया कि नहीं आया कि ऐसा वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते, राग करते करते नहीं, वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो, ये भाव भाषण है। मैंने शब्द पढ़ाए ना पेंसिल के वचना पर, कि भिन्नता भाषित हो, वेद ज्ञान का प्रयोग अभ्यास करते करते भिन्नता का भाषण हो जाए तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। भाषण हुआ कहो, निर्णय हुआ कहो, पहचान हुआ कहो, लक्ष्य हुआ कहो, एक ही बात है। श्रीमद जी ने भी आत्मसिद्धि में यही बात की, लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदाई। तमाम शास्त्र का अभ्यास करने का क्या प्रयोजन है? आत्मा की पहचान होना, आत्मा का लक्ष्य हो जाना। पहचान होने से लक्ष्य हो जाता है। पहचान में जो अपना स्वरूप पहचान में आता है, पहचाना जाता है, वो उतना महान है कि फिर वो ज्ञान में से हट नहीं सकता, उसी को लक्ष्य कहते हैं। जो ज्ञान में से निकल जाए वो लक्ष्य वाली चीज नहीं, स्मरण करना पड़े वो लक्ष्य नहीं। लक्ष्य उसको कहते हैं कि जिसको हटा नहीं सकते, वो हटता नहीं स्वतः, उसका स्मरण विस्मरण से कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा का स्मरण करना पड़े वहां तक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। भले ही स्मरण करे तो भी उसको आवश्यकता, लक्ष्य सतत रहता है। जैसे हमको व्यापार में पैसा कमाने का लक्ष्य है, क्या है तो प्रवृत्ति हम कितनी करेंगे कि कोई अच्छा ग्राहक आ जाएगा तो खर्च करने लग जाएंगे, क्या करेंगे? खर्च करने में पैसा तो जाता है कि मिलता है, लेकिन लक्ष्य युक्त प्रवृत्ति है। खर्च करने की प्रवृत्ति कैसी है? लक्ष्य सहित है कि इतना अच्छा ग्राहक है कि एक काम में, एक दिन में हमको 10,000 का मुनाफा हो जाएगा इनके साथ व्यापार होने से, उतना माल हमारा ले जाएगा कि आज ही 10,000 मिल जाएगा जो महीना भर में मिलता है। तो हमको 200 रुपया आज खर्च कर देना है, को बोलना है कि आपका काम निपट जाए, फिर आपको अकेले गाड़ी तैयार है, टैक्सी मैंने मंगा ली है, सारा हैदराबाद आपको दिखा देना है, है? और अच्छे से अच्छी होटल में अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है। तो लड़के के लिए एक दिन में 200 रुपया नहीं खर्चे है? लड़के के लिए एक दिन में 200 रुपया नहीं खर्च है, लेकिन ये जाने वाला नहीं है, 10,000 देने वाला है, ऐसी बात है। तो उसको 10,000 उसमें दिखता है, एक दिन में 10,000 कहां से? हाँ, सारा एक महीना तक पसीना करे तो 10,000 मिलता है, एक दिन में मिल गया तो खर्च नहीं करता है, वो दोबारा आ जाए इसलिए करता है। क्या, कैसे कर, क्यों करता है? और दोबारा वो अपने दुकान पे आ जाए। ऐसा लक्ष्य वाली प्रवृत्ति में ऊपर से देखो तो नुकसान है और भीतर से देखो तो लाभ है, इसमें ज्यादा लाभ है। वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कह रहे कितना उदार है, 3 घंटे में तो 200 रुपया का खर्च कर दिया आपने पीछे। तो ऐसे लक्ष्य में जो बात रहती है वो उल्टी प्रवृत्ति करने में भी लक्ष्यों का ही रहता है, ये अपना मुद्दा है समझने का। तो आत्मा की पहचान हुई तो अद्भुत से अद्भुत अपना जो स्वरूप है सिद्ध पद, साक्षात सिद्ध पद, सिद्ध समान है वो तो समझाने के लिए है, वास्तव में अपना स्वरूप ऐसा है कि सिद्ध अपने समान है। सिद्ध भगवान मेरे समान है ऐसी बात है, उतना वजन आता है। वो लक्ष्य उसका कैसे हटे फिर लक्ष्य कैसे हटे इसका? एक आजन्म निर्धन हो उसको अपने घर के भीतर के कमरे में से निधि मिल जावे, कितनी निधि मिल जावे कि 10-20 उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है खाना खावे तो भी खुटे नहीं, और फिर परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं रहे, आवश्यकता नहीं रहे, वो क्या अपनी निधि को भूल जाएगा? नींद में भूल सकता है क्या? जागृति में तो भूले नहीं, लेकिन नींद आ गई तो क्या भूल जाएगा क्या? कि घर में से इतनी बड़ी चीज निकली थी, एक सोने के बड़े बर्तन में सब हीरे मोती जवाहरात निकला, करोड़ों का अरबों का, तो क्या सिद्ध पद की कीमत इससे कम है क्या? गुरुदेव तो ये कहते थे कि ये तो धूली है, धूली, अब आत्मस्वरूप के आगे ये सब धूल ही धूल है। इतने महान पदार्थ को पहचानने में आवे और उसका लक्ष्य नहीं बंधे, ऐसा कम कैसे बन सकता है? भले ही उपयोग बार जाए उसका लक्ष्य मिट सकता नहीं है, मिटाना चाहे तो भी। तो ऐसे भिन्नता भाषित हो तो, ऐसा लक्ष्य हो तो आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाए, उसकी इतनी कीमत आती है, उतनी रुचि जम जाती है, उतनी महिमा भीतर में से उमड़ पड़ती है कि परिणाम इससे भिन्न रह सकता नहीं। उपयोग ज्यादा दूर जा सकता नहीं, एक दफे अस्तित्व भाषित हो गया फिर परिणाम ज्यादा दूर प्रकृति जोर खा सकती नहीं है, नजरबंदी हो जाएगी। इतना पदार्थ महान है, अब घर में से पैसा निकले, ये जवरात निकले तो क्यों नजरबंदी हो जाती है? चीज ऐसी है कि दीनता छूट गई, किसी से फिर मांगने का अवसर नहीं रहा, जगत में किसी की भी परवाह करने की बात नहीं रही, इधर भी दीनता छूट जाती है। स्वरूप की पहचान होने से सारे जगत की दीनता छूट जाती है, किसी की दीनता नहीं होती। ये बात आई है परमात्म सार में, गुरुदेव के वचनामृत में ये बात है। चार नंबर का विश्राम परमागम सार, इसमें परमागम सार यह वस्तु प्रयोग में लाने के लिए अंदर से मूल में से पुरुषार्थ का उपाड़ आना चाहिए कि मैं ऐसा महान पदार्थ क्या कैसे पुरुषार्थ का उत्थान होता है। पहचान तो ज्ञान में होती है, पहचान करने वाला ज्ञान है, लेकिन अपना अपनी महानता इतनी भाषित होती है अंदर में से पुरुषार्थ आता है कि मैं इतना महान हूं। राग की और राग के विषयभूत जगत के समस्त पदार्थ का आधार बुद्धि छूट जाती है। अनादि अनंत मेरी गुण संपत्ति से मैं जीने वाला हूँ, टिकने वाला हूँ, निरालंबन निरपेक्ष हूँ, किसी का अवलंबन और आधार की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ अंदर में से ज्ञान लेकर के आता है। पुरुषार्थ का कारण ज्ञान है। ऐसे निरालंबन रूप से किसी के आधार बिना आत्मरस की धुन चढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं बुद्ध। आत्मरस की धुन चढ़ जाती है, यानी धुन जिसको चढ़ती है किसी की सुने नहीं, फिर किसी की सुने नहीं, ऐसी धुन चढ़ जाती है। ऐसा स्वरूप प्राप्त होवे ये होवे, उसको तो स्वरूप की प्राप्ति मैंने अभेद अनुभव उसको होवे ही होवे। आत्मा चैतन्य तत्व है, ज्ञायक स्वरूप है, उसे पहचानना चाहिए। क्या कहते हैं? उसे पहचानना चाहिए। पूजी बहनश्री का ये देखो पहचान पर कितना वजन है इस बोल में, तो उसको पहचानना चाहिए, भाव भाषण करना चाहिए। जीव को ऐसा भ्रम है कि बिना पहचान जीव को ऐसा भ्रम है कि परद्रविका मैं कर सकता हूँ। जो भी औदयिक कार्य होता है उस उदय में मैं पर पदार्थ का कार्य करता हूँ, शरीर का कार्य मैं करता हूँ, मन वचन का कार्य मैं करता हूँ, दुकान में धंधा व्यापार में करता हूँ, ऐसा भ्रम है। परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता, पर पदार्थ के द्रव्यगुण पर्याय में अपना चैतन्य तत्व का द्रव्यगुण पर्याय बिल्कुल भिन्न होने से एक दूसरे का एक दूसरे में पहुंच नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र, दूसरे जीव और परमाणु भी स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वयं ज्ञाता है, और आत्मा स्वयं ज्ञाता है, जीव मात्र ज्ञायक स्वरूपी है, स्वयं ज्ञाता है, जानने के कार्य में अपनी शक्ति कार्य करती है, दूसरे की जरूरत नहीं है। पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं, आत्मा का ज्ञान पर पदार्थ में जाता नहीं। जैसे कोई बाहर आवाज आती है तो आवाज बाहर आती है तो ज्ञान वहां जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है। इधर ज्ञान वहां गए बिना जान लेता है। दूर का पदार्थ दिखता है तो ज्ञान वहां जाता है कि नहीं जाता है? ज्ञान नहीं जाता है। ज्ञान अपने में रह करके दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ को जान लेता है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर पदार्थ में ज्ञान जाता नहीं है और पर में से कुछ आता नहीं है और ज्ञान में कुछ आता नहीं है, ये अवलोकन करने के विषय है। मेरा ज्ञान की व्यापकता मेरे ज्ञान में ही है, पर पदार्थ में नहीं, और पर पदार्थ की व्यापकता मेरे ज्ञान में नहीं है। ये अवलोकन से मालूम पड़ना चाहिए, मात्र विचार तर्क न्याय युक्ति से आगम से नहीं, अवलोकन से मालूम पड़ना चाहिए। ऐसा समझने के लिए देव शास्त्र गुरु आदि बाह्य निमित्त होते हैं। ये भिन्नता समझने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु वगैरह बाहर में निमित्त होते हैं। समझते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन समझने में ऐसा कभी समझा नहीं है, ऐसे निमित्त मिलने से ये समझ में बात आती है। परंतु दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो प्रकट होता है वह सब अपने में से ही प्रकट होता है। बाह्य निमित्त की उपस्थिति में भी दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो भी अवस्था प्रकट होती है वह सब आत्मा में से अपने में से ही प्रकट होता है, देवगुरु शास्त्र में से अपनी अवस्था नहीं होती। ये द्रवदृष्टि प्रकाश में एक पत्र चला है कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कोई उपदेश से ज्ञान उत्पन्न होता है या ज्ञान कहाँ से आता है, उपदेश में से आता है, शास्त्र में से आता है कि नहीं। ज्ञान है वो आत्मा ज्ञान भंडार है, उसमें से निकलता है। किसमें से आता है ज्ञान? कि जिस आत्मा में ज्ञान शक्ति का भंडार है, अनंत ज्ञान भरा है। कितना ज्ञान है? अनंत अनंत अनंत, जिसकी हद नहीं उतना ज्ञान भरा है, उसमें से ज्ञान आता है। उपदेश में से ज्ञान आता नहीं है, वह सब अपने में से ही प्रकट होता है। उस मूल तत्व को पहचानना वही कर्तव्य है। देखो शुरू में तीसरी पंक्ति में वो बताया था कि वही कर्तव्य है, यहाँ भी लिखा वही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि उस मूल तत्व को पहचानना वही कर्तव्य है। देखो पहचान पर कितना वजन है। वही कर्तव्य है मुमुक्षु का, पहला सबसे पहला स्वरूप का मूल तत्व की पहचान करना वही कर्तव्य है। ये कर्तव्य का तो बोल है, कर्तव्य क्या? स्वरूप की पहचान करना वही कर्तव्य है। कैसे पहचान करना? ये वेद ज्ञान के प्रयोगाभ्यास से पहचान करना। दूसरा, बाहर का तो अनंत काल में बहुत किया है, ऐसा कार्य नहीं किया आपने, आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं किया, दूसरा सब कुछ कर लिया है। धर्म के नाम पर बहुत कठिन से कठिन तपश्चर्या कर ली है, अभी तो कुछ नहीं इतना करते, अभी तो पूजा भक्ति स्वाध्याय करके चले जाते, लेकिन कठिन से कठिन तपश्चर्या करी है, लेकिन अपने आत्मा की पहचान मूल तत्व की कभी नहीं किया। दूसरा, बाहर का तो अनंत काल में बहुत किया है, शुभ भाव की सब क्रियाएं की, शुभ भाव जितने प्रकार के हैं वो सब प्रकार की क्रिया जो है वो हमने की है, उस काल में इस जन्म में नहीं की तो अगले अगले जन्म में बहुत किया है। और शुभ भाव में धर्म माना, क्या माना? शुभ भाव में धर्म माना, पुण्य हुआ इसमें धर्म माना। परंतु धर्म तो आत्मा के शुद्ध भाव में ही है, शुभ भाव में नहीं है। ये नास्ती आ गई। परंतु धर्म तो आत्मा में, आत्मा के शुद्ध भाव में है, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध स्वसंवेदन ज्ञान के परिणाम, शुद्ध वितरागी भाव रूप चारित्र के परिणाम। ऐसे शुद्ध भाव में धर्म है, शुभ भाव में धर्म नहीं है। शुभ तो विभाव है, क्या कहते हैं? शुभ तो विभाव है, आकुलता रूप है, दुख रूप है, उसमें कहीं शांति नहीं है। कितना बोल दिया मैंने, बहुत स्पष्ट कर दिया है विषय को कि शुभ है वो स्वभाव नहीं है। अच्छे से अच्छा किसी भी प्रकार का शुभ हो, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिस शुभ भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, गुरुदेव कहते थे खुद तीर्थंकर उसमें कहीं शांति नहीं है, शांत परिणाम है। और उपासना और आराधना की दृष्टि से देखा जाए तो ये शुभ परिणाम आराधना नहीं है। क्या तो शुभ परिणाम है वो आराधना नहीं है, तो क्या है? अपराध है। परिणाम है ये अपराध है, विभाव है सो अपराध है। ऐसा या तो आराधना हो या तो मिथ्यात्व के साथ हो तो विराधना हो। मिथ्यात्व के साथ हो तो क्या होता है? विराधना। ऐसी बात है, तो क्या है कि इसकी कीमत हमने ज्यादा कर ली है, स्वभाव की कीमत इतनी ज्यादा कर ली है कि उसको अपराध कहे तो अपनी कीमत जो की है उस पर धक्का लगता है, हमारी जो श्रद्धा है उसको धक्का लगता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा लगता जो है सो है, वो उसका स्वरूप तो है सो है। विभाव अपराध नहीं है तो क्या है? विभाव शब्द तो रखा है, तो क्या विभाव अपराध नहीं है? जितने भी विभाव है सभी अपराध है। तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भी अपराध के परिणाम है, बंध के परिणाम को अपराध के परिणाम को, एक ही बात है। उससे कोई आराधन नहीं होता। हाँ, उतनी बात जरूर है कि यद्यपि शुभ भाव आए बिना नहीं रहते तो जिसको पकड़े उसको अच्छा लग जाएगा। देखिए, जो शुभ भाव आए बिना नहीं रहेगा इसलिए हमको आता है। क्या हमारी बात आई है? शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। देखिए, ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, इसलिए हमको आता है। आए बिना नहीं रहेगा, आए बिना नहीं रहेगा, इस पर वो जल जाता है। ये जानने का विषय, उस पर वजन देना नहीं चाहिए। यद्यपि शुभ भाव आए बिना नहीं रहते तथापि वहाँ शांति तो नहीं है। वहाँ शांति नहीं है, वो अशांत परिणाम है। लेकिन कषाय की तीव्रता का उनको अनुभव ज्यादा है, कषाय के अभाव रूप शांति का पहचान और अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है। इसलिए तीव्र कषाय में से मंद कषाय शुभ भाव में आता है तो थोड़ी शांति लगती है, लेकिन वो अशांति की जाती है, उसमें शांति नहीं है। जैसे हम पूजा करते हैं तो थक जाते कि नहीं थक जाते? सारे दिन पूजा कर सकते हैं क्या? एक घंटा दो घंटा में थक जाएंगे, स्वाध्याय करते करते थक जाएंगे, भक्ति करते करते थक जाएंगे, क्यों थक जाते हैं? स्वभाव में कभी थकान लगे क्या? स्वभाव में थकान नहीं लगती। इसका एक दृष्टांत अच्छा है। कि हम शारीरिक परिश्रम करते हैं तो हमको थकान लगती है। परिश्रम में तो थकान लगे ही लगे, लेकिन हम आराम करते हैं तो आराम करते करते थक जाते हैं, है कि नहीं? जैसे हम सारे दिन व्यापार धंधा दुकान किया, दुकान में किया, भी घर में सारा रात्रि को लेट जाते सो जाते हैं, फिर सुबह क्या उठ जाते हैं? कोई ऐसा कहे कि आपको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आपको लेटे रहना है, आप उठो ही मत, है? आराम करते करते थकते कि नहीं है? भाई मैं तो सोते सोते थक गया, अभी मुझे थोड़ी देर बैठना है, बैठे बैठे थक जाता है, क्या होता है? फिर बैठे बैठे थक जाता है, यानी मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, अगर मैं चलूंगा नहीं तो मैं बैठ 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 कर मैं थक गया, सारे दिन बैठ बैठ कर मैं थक गया, तो फिर चलना है। तो चलते चलते क्या करता है? मैं चलते चलते थक गया, मुझे फिर आराम करना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ये किसी भी जो भी बैठना, सोना, चलना, खाना खाते खाते थक जाएंगे, पूजा करते, भक्ति करते, स्वाध्याय करते, सब में थकान लगेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। लेकिन श्वासों श्वास में थकान नहीं लगती, निरंतर चलता है, नींद में भी चलता है, हाँ, उठबैस करे तो थक जाएगा, लेकिन श्वास का उठबैस होता है, थकता है नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया है। अगर उसको रोको तो मर जाएगा, श्वासों श्वास को रोक नहीं सकते, उसमें रोकने में तकलीफ है, चलने में तो तकलीफ है ही नहीं, सारा जीवन जन्म से मरे वहां तक चलता रहता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन रोकने में तकलीफ है, क्योंकि ये स्वभाव है शरीर का, प्राण इसको बोलते हैं। स्वभाव को क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास को प्राण बोलते हैं, उसमें थकावट नहीं आ रही है। ऐसे आत्मा के जो प्राण हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, सुख, शांति, उसमें कभी थकावट लगे नहीं। देखिए सिद्ध परमात्मा, हरियंत परमात्मा, जहां से केवल ज्ञान हुआ, जहां से परमानंद हुआ, अनंत काल तक चलता रहेगा, कभी थकान लगेगी? ये कहते हैं कि शुभ भाव में शांति नहीं है, थकान लगती है, क्योंकि शांति नहीं है। शांति हो, सुख हो, आनंद हो, ऐसा तत्व तो चैतन्य ही है, जिसमें शांति है, सुख है, आनंद है, ऐसा तो एक चैतन्य तत्व ही है। चैतन्य के अलावा इसमें सुख शांति और आनंद कहीं पे नहीं है। आत्मा निवृत्ति में चैतन्य परिणति में ही सुख है, बाह्य में कहीं सुख है ही नहीं। निवृत्ति में ने क्या? राग की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं। राग निकल गया, राग मिट गया, उसको राग से निवृत्त हो गई परिणति, विभाव से निवृत्त होगी। ऐसी निवृत्तिमय चैतन्य परिणति, परिणति खुद प्रवृत्ति रूप है, लेकिन राग निकल गया उसको निवृत्ति यहाँ पर कहते हैं। निवृत्तिमय जो चैतन्य परिणति है, इसमें सुख है, बाह्य में कहीं सुख है ही नहीं। चैतन्य आत्मा और उसकी स्वाभाविक परिणति, उससे बाहर निकलो तो कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं, देखो सारा बोल में यही बात है, इसलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना वही यथार्थ श्री रूप है। चैतन्य तत्व ने ओळखी ने तेमा ठरवानो प्रयास करवो तेज खरु श्री मैंने कल्याण है। क्या कहते हैं के स्थिर होना एकाग्र होना ये बिना पहचान हो नहीं सकता, इसलिए पहचान कर उसमें स्थिर होने की बात नहीं। ऐसे सीधा कोई बिना निर्णय किए बिना पहचान किए कोई स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं उसको स्थिर होने का कभी बनता नहीं। एक श्वेतांबर के साधु थे, मिले थे, अंत हो गए थे, काफी बुजुर्ग थे, हाँ चली गई थी, हो गए थे। तो उसको क्या है कि दूसरी कोई फिर कोई उसको काम नहीं बतावे कि तुमको खाना लेना जाना है, कपड़ा धोना है, ये सब करते हैं ना साधु लोग भी करते हैं कि खाना खाने को लेना लेने को जाता है भिक्षा के लिए, और फिर कपड़े वपड़े धोना पड़ता है उन लोगों को। तो उनको तो कोई बतावे नहीं क्योंकि उसको तो आँख चली गई थी, सारे दिन उसको खाना खाते बैठ लेने का थोड़ा ऐसा विचार में आ गया था कि अपना जीवन तो अभी कुछ शेष रहा तो कुछ आत्मा का कल्याण हो जाए ऐसा करना चाहिए। तो अपने स्वाध्याय में कुछ स्वतंत्र लोग भी आते हैं वहाँ, तो उसको कोई इनका परिचय होगा, तो परिचय होने से पहले उनको कुछ आत्मा में कल्याण करने का या कुछ बोला होगा कि हमको तो आत्मा में स्थिर हो जाना है, कि आत्मा में हम स्थिर हो जाए तो शांति मिल जाएगी, कैसे करना हमको कोई समझ में नहीं आता है, तो हम आपको कुछ बातचीत करने के लिए साथ में लेकर आएंगे, हमको सोमवार साथ जाना हुआ, क्या विचार चलता है आपका, प्रवृत्ति तो बाहर में कुछ है नहीं, अंधे आदमी को तो कोई बाहर में प्रवृत्ति नहीं रहती सिवाय खाना खाना, साधु थे इसलिए दूसरे तो कोई प्रवृत्ति रह भी नहीं। तो बार बार ऐसा विचार आता है कि आत्मा में स्थिर हो जाए, उपयोग को आत्मा में स्थिर करना है, लेकिन होता नहीं है, क्या करें। तो हमने पूछा कि आत्मा में उपयोग को स्थिर करना है, वो आत्मा कैसा है उसका पहचान किया क्या है। तो कहीं पहचान तो नहीं किया, तो बिना पहचान कैसे स्थिर हो गए। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमको तो ये विचार चलता है कि आत्मा में स्थिर हो जाए तो अच्छा है, आत्मा में हम स्थिर हो जाए तो अच्छा है, हमको तो आत्मा में स्थिर होना है। लेकिन उनके पास कोई विधि विषय कोई विज्ञान नहीं है, सारे संप्रदाय में नहीं है। तो बात तो आपकी अच्छी है, अब पहचान कैसे करें। फिर ये बात थोड़ी चली, कहने का मतलब क्या है, ए विधि से अक्रम से कार्य करने को चाहेंगे तो भी कार्य होने वाला नहीं। ये आत्मा का पहचान होना ये पूर्वक्रम है, बाद में ही स्थिर होने का कार्य बनता है, ये सहज रूप से इधर आया है। इसलिए चैतन्य तत्व को पहचान कर उसमें स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए, वही यथार्थ श्री रूप है। श्री रूप ने कहा यथार्थ यही श्री रूप है, ऐसा ही यथार्थता होती है, इसके दूसरे ढंग से कोई यथार्थता नहीं आती है। ऐ यथार्थ पद्धति या विचार है, उससे कोई काम होने वाला वो एक ही मनुष्य जीवन में क्या कहते हैं आत्मस्वरूप की चैतन्य तत्व की पहचान करना वही एक मनुष्य जीवन में करने योग्य हित रूप और कल्याण रूप है, यही कर्तव्य है, ये कर्तव्य का बोध है। इसे ही मनुष्य जीवन में हमेश के लिए सुख शांति का एक रास्ता मिल जाता है अगर आत्मतत्व को पहचान लिया तो। यही कर्तव्य है, दूसरा कुछ कर्तव्य नहीं है, ये बात साफ। आधा घंटा चर्चा चलेगी। व्यापकता का दो पहलू है, एक क्षेत्र अपेक्षित है और एक भाव अपेक्षित है। तो व्यापकता एक पर्याय होने पर भी उसमें द्रव्य का संबंध हो जाता है, क्योंकि द्रव्य में द्रव्य की व्यापकता पूरे क्षेत्र में है ना। ज्ञान की व्यापकता जितना अपना चैतन्य देहाकार क्षेत्र है उतने में ही है, इससे बाहर कहीं भी नहीं। भले दूर में पदार्थ दिखे या आवाज सुने, लेकिन ज्ञान की व्यापकता इधर ही है, ये क्षेत्र अपेक्षित है। और भाव में भी ज्ञान ज्ञान में ही है, जैसे अपना सुबह जो गाथा चलती है कि उपयोग उपयोग में है, व्याप्य व्यापक रूप से उपयोग उपयोग में है, और वेद्य वेदक रूप से भी उपयोग में ही वेद्य वेदकता है। जो वेदता है ज्ञान, जो ज्ञान वेदता है, वही ज्ञान वेदा जाता है। क्या कौन वेदन में आता है कि जो ज्ञान वेदता है वही वेदा जाता है? तो जो वेदता है वही वेदा जाता है, उसमें बाहर कहीं व्याप्ति होने वाली नहीं है। और इसमें वेदने वाला स्वयं वेदन में आता है, तो फिर बीच में किसी माध्यम की, निमित्त की, इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है। तो बीच में कोई परोक्षता नहीं रही। परोक्षता कब होती है कि बीच में इंद्रिय का निमित्त होवे, तो जैसे आंख से देखते हैं तो भी परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जो भी पदार्थ दिखने में आता है वो प्रत्यक्ष, और ज्ञान ही वेदता है और ज्ञान ही वेदन में आता है, उसमें प्रसन्नमुखता कहाँ रही, कैसे रही, बताइए। तो जो रहस्यभूत चीज है वो स्वसन्मुखता की है, अंतर्मुखता की है। जिस बेंसिल में लिखा के जितना भी धर्म के नाम से किया वो सब बाहर में किया, बाह्य में किया, ऐसा आया ना अभी 375 में। तो इसमें क्या है कि बहिर्मुख परिणाम से सब कुछ किया। शास्त्र का अध्ययन, पढ़ाई, स्वाध्याय, वो भी बहिर्मुख उपयोग से कर लिया। जब तक बहिर्मुख भाव है वहां तक परिणाम की दिशा उल्टी है, उसमें स्वरूप का अनुभव कभी हो सकता नहीं है। एक ज्ञान ज्ञान का वेदन में आ जावे, ग्रहण हो जावे, ज्ञान में ज्ञान का वेदन का ग्रहण हो जावे, तभी स्वसन्मुखता होगी, तभी अंतर्मुखता होगी, तभी दिशा बाहर की छूट जाएगी और तभी अनुभव का प्रोसेस चालू होगा। तो ये बहुत दिशा बदलने के लिए ये वेदन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पर तो जितना भी चिंतन, मंथन और अवलोकन जो भी चले, उसी जगह चलाना चाहिए। हाँ, जब ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि ज्ञान के आधार से ही, ज्ञान क्रिया के आधार से ही समृद्धि कर्म में वो बात चलेगी, ज्ञान क्रिया के आधार से ही ज्ञान रहा हुआ है, तो वो ज्ञान कौन सा रहा हुआ है? ज्ञान स्वरूप ही आत्मा, ज्ञान स्वभाव कहाँ है? ज्ञान क्रिया के आधार पर, ज्ञान क्रिया में से वो मिलता है, यहां से पकड़ना चाहिए। आत्मा मिलता नहीं है, जैसे कोई खोई हुई चीज नहीं मिलती है वैसे, तो अंधेरे में चीज खो गई हो तो नहीं मिले। लेकिन ये बात, ये अच्छी चीज है, अच्छा प्रसंग है कि हमारी चीज अंधेरे में हमको नहीं ढूंढनी है, ज्ञान प्रकाश में ढूंढने की है, तो उतनी तो सुविधा है। वरना तो ये कहेंगे कि भाई क्या करें, अंधेरे में चीज कैसे देखे। तो राग में और पर में ढूंढने को जाएगा तो अंधेरे में छूटती चीज ढूंढने की बात हो गई, अपनी वस्तु। और ज्ञान प्रकाश में आत्म स्वभाव ढूंढने का है तो प्रकाश में ढूंढने की बात है। इसलिए ये मार्ग की एक सुविधा है कि हमको ज्ञान में से ही आत्मा की प्राप्ति करनी है। ज्ञान ही साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई आधार नहीं। भाषा में तो थोड़ी विकृति आएगी, वाच्य ऐसा नहीं है, स्वयं को ढूंढना है। क्या ज्ञान भी स्वयं है, और जो स्वभाव ढूंढने का है वो भी स्वयं है, दूसरा पदार्थ को नहीं ढूंढने का है। ये तो दृष्टांत की बात, स्वयं को ढूंढना है। तो स्वयं में कौन सी दूरी है? पहचानना चाहिए, सही बात है, पहले पहचाना नहीं चाहिए। ज्ञान में मैंपना होना चाहिए, राग में मैंपना हो रहा है नहीं होना चाहिए, बस उतनी बात है। परमार्गम सार में बात है, वचन आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा वचन आता है स्वपणे अनुभवातु ज्ञानते आत्मा छे। क्या कहा? स्वे रूप से मेरे ज्ञान में मैंपना हुआ और ज्ञान अनुभव में आया, बस आत्मा अनुभव हो गया। क्या बात हुआ? इससे आत्मानुभव कोई दूसरी चीज है ही नहीं। स्वपणे अनुभवातु ज्ञान तेज आत्मा छे, अनुभव तो पर्याय छे, ज्ञान पण पर्याय छे। તો કે સ્વપણું આવ્યું ને અહીંયા દ્રવ્ય આવી ગયું આત્મા, મેં પણ હોવા હોય દ્રવ્ય. જ્ઞાન તો જ્ઞાન હૈ લેકિન મેં રૂપ સે મેં જ્ઞાન સ્વરૂપ હું, એસા અનુભવ મેં આ ગયા તો આત્મા અનુભવ હો ગયા. એસી બાત હાં, થર્ડ પર્સન કા ચિંતન કરતા હૈ, આત્મા કા ચિંતન કરતા હૈ જૈસા કોઈ દૂસરા પદાર્થ હો. એ ગલત પદ્ધતિ હૈ. इसलिए श्रीमद जी ने पहचान के विषय में ऐसा ले अस्तित्व ग्रहण लिया है कि अपना हयाती मौजूदगी को ग्रहण करना है वेदन से, बस पहचान होगी, लक्ष्य हो गया, अनुभव हो जाएगा. उसके बाद पहचानने में सुख का भंडार का पता चल गया. क्या अनंत सुख है तो ऐसी पहचान हुई है. कितना अनंत सुख की पहचान हुई है. हाँ, पहचान तो सुख की, अनुभव तो बाद में ही होता है. कल ही आया निर्णय पहला होता है, अनुभव की अनुभूति बाद में होती है. 136 में कल क्या आया, पहले अब निर्णय होता है. पहचान पहले होती है, एकाग्रता बाद में होती है. अनुभव में तो एकाग्रता है, वो बाद में होती है. अनुभव प्रकाश आत्मा આ જીવના ઉપયોગ રૂપમય સ્વચ્છતાના જે પરિણામ છે તે પરિણામમાં દેખવા જાણવાના સ્વભાવથી સર્વ પર જ્ઞેય અથવા દ્રશ્યના આકાર થાય છે. એવી સદાય ઉપયોગની વસ્તુ સ્વભાવ રીતિ છે. તેથી નિશ્ચયથી આ એક જીવમાં પર પણ છે અને સ્વ પણ છે, પણ પર વ્યવહાર છે, સ્વનિશ્ચિત છે. પર પણ છે અને સ્વ પણ છે. પર જ્ઞેય રૂપ પર દ્રશ્ય રૂપ જ્ઞાન દર્શનના આકારથી જે કેવળ એક આકાર, તે આકાર તો પર છે અને ત્યાં જેટલું દેખવા જાણવા રૂપ છે તેટલું તો સ્વ છે. સ્વપર પ્રકાશક પણ છે ને, એટલે તો સ્વમાં પરનું કથન આવે તે વ્યવહાર. એટલે શું છે કે જે પરનું પ્રતિબિંબ છે ને એ નિશ્ચય છે, પરનો આકાર છે તે નિશ્ચય છે. કેમ કે પર્યાય તો જ્ઞાનની છે ને, પરના આકાર રૂપે જે જ્ઞાન નો પર્યાય થયો તે નિશ્ચય છે. એટલે પર જીવમાં છે, પણ પર પદાર્થ જીવમાં છે એમ નથી કેવું. હા, સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચય થી આત્માની જ છે. સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ નિશ્ચયથી આત્માની જ છે. હવે જો આપણી પાસે ચિદવિલાસ હોય ને, આ દીપચંદીનું છે, આત્મા અવલોકન અનુભવ પ્રકાશ ચિદવિલાસ એ બધા દીપચંદીની કરતે છે. ચિદવિલાસ આપણી પાસે હોય તો જરા એમાંથી બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. ચિદવિલાસમાં આ વિષય ઉપર સ્વપર પ્રકાશક પણ આ ઉપર શું, તો કાલે લેતા આવજો ને, ઘરે હોય તો કાલે લેતા આવજો. આપણે જરા એ વિષય ઉપર સ્પષ્ટ ચર્ચા થાય એવું છે. હે, देखो निश्चय थी स्व पर आ जीव मां छे, प्रगटपणे आ जीव मां छे, ठीक रूप स्थिर रूप आचरण गुण ते आचरण गुण कोई नेय रूप उद्गल स्कंद ना संसार ना निमित्त काल थी केवल एक तो आकारों मां ज प्रवर्ते, एक ते आकारों मां ज प्रवर्ते छे अने क्यारे केवल ज्ञान दर्शन रूप मां प्रवर्ते छे। वळी एक बात छे के ज्यारे आचरण गुण ते एक आकारों मां प्रवर्ते छे ते काळे तो जीव द्रव्य अज्ञान ने दुखवादी रूपे अशुद्ध थाय छे। અને વળી આચરણ ગુણ આકારને છોડીને જ્યારે કેવળ કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન દર્શન રૂપ પ્રવર્તે છે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન સુખાદિથી શુદ્ધતાથી જીવ દ્રવ્ય શુદ્ધ થાય છે એવી આચરણની રીતિ છે। એટલે શું કહે છે કે જ્ઞાનમાં પરજ્ઞેયનો આકાર ઉત્પન્ન થાય એ કોઈ દોષ નથી, પણ પરાચરણ થાય તો જીવને દુઃખ થાય। શું પરાચરણ એટલે શું કે પર મારામાં છે એવું આચરણ થાય એનું દુઃખ છે, પરનું પ્રતિબિંબ મારામાં આવે એનું દુઃખ નથી એમ કેવું છે। આકાર ભલે આવે એનો, પર પદાર્થનો